नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बेहद महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करेंगे। उद्बोधन का नाम है पूजन कृत्यों का उद्देश्य। स्रोत, जैसा मैंने कहा, स्वयं पूज्य गुरुदेव का उद्बोधन है। हम सब मतलब अक्सर लोग पूजा पाठ तो करते ही हैं, रोज खाते हैं, कभी कभी करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये जो हम कर रहे हैं इसका असली मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ भगवान को खुश करने का कोई तरीका है या फिर इसका कोई और कोई गहरा मतलब भी है? चलिए आज इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं।
हाँ, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। अक्सर ये सवाल मन में आता है। पूज्य गुरुदेव यही समझाते हैं कि देखिए, अकेले मनुष्य की शक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, वो सीमित है ना?
हाँ, ये तो है।
अपना गुजारा चल जाता है, ठीक है, पर अगर जीवन में ऊंचा उठना है, कुछ बड़े काम करने हैं, तो फिर तो एक बड़ी शक्ति से जुड़ना ही पड़ता है, एक शक्ति पुंज से। जैसे जैसे कोई बल्ब है या पंखा है, उसे बिजली घर से जुड़ना ही होता है, तभी वो चलेगा।
अच्छा,
तो इसी जुड़ने की प्रक्रिया का नाम ही पूज्य गुरुदेव ने उपासना बताया है।
उपासना, उप आसन, यानी पास बैठना।
जी,
पूज्य गुरुदेव के उदाहरण भी बड़े अच्छे होते हैं।
जी,
जैसे वो कहते हैं कि चंदन के पास रहने से मामूली झाड़ियां भी महकने लगती हैं।
जी हाँ।
या फिर जैसे पारस मणि होती है, उसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। तो क्या वैसे ही ईश्वर के पास बैठने से, उनके सानिध्य से साधारण मनुष्य भी महान बन सकता है?
बिल्कुल बिल्कुल, यही भाव है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। गुरुदेव ईश्वर की तुलना कल्पवृक्ष, पारस और अमृत से करते हैं।
कल्पवृक्ष, पारस, अमृत, वाह।
हाँ, मतलब उनके पास बैठने भर से या उन्हें छूने मात्र से हमारी कामनाएं पूरी हो सकती हैं, मृत्यु का जो भय है उससे मुक्ति मिल सकती है, हमारी कमजोरियां दूर हो सकती हैं। गुरुदेव तो याद दिलाते हैं कि आत्मा तो अमर है ही, शरीर तो बस कपड़ों जैसा है, बदलते रहते हैं।
तो ये जुड़ाव, ये सानिध्य, ये पाया कैसे जाए? मतलब इसका तरीका क्या है?
हाँ, तरीका गुरुदेव इसके लिए भी बड़े सरल उदाहरण देते हैं, पतंग का और कठपुतली का।
पतंग और कठपुतली, कैसे?
देखिए, पतंग जब उड़ाने वाले के हाथ में होती है, डोल उसके हाथ में होती है, तो कितनी ऊंची, कितनी सुरक्षित उड़ती है आसमान में।
हाँ।
और कठपुतली, वो बाजीगर के इशारे पर कितना सुंदर नाच दिखाती है। तो गुरुदेव कहते हैं ऐसे ही जब हम अपना जीवन ईश्वर को सौंप देते हैं, मतलब उनकी मर्जी पर चलते हैं, उनके सहारे जीते हैं, तो जीवन अपने आप उन्नति करता है। जैसे कोई बेल होती है ना, वो पेड़ का सहारा पाकर ही ऊपर चढ़ पाती है।
सही बात है। लेकिन आपने कहा ईश्वर को जीवन सौंप देना, पर क्या इससे पहले कुछ और भी करना होता है?
हाँ बिल्कुल, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है, वो है अपनी सफाई, आत्म परिष्कार।
अपनी सफाई?
हाँ, खुद की सफाई। गुरुदेव कहते हैं जैसे कोई मैला शीशा हो, उसमें चेहरा साफ नहीं दिखता, या पानी गंदला हो तो उसमें परछाई ठीक से नहीं बनती, बिल्कुल वैसे ही अगर हमारा मन मैला है, अंतःकरण में विकार भरे हैं, तो फिर ईश्वर से जुड़ना, उनका अनुभव करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अच्छा, तो ये जो पूजा के शुरू में हम कुछ करते हैं, पंचकर्मा कहते हैं शायद, पवित्रीकरण, आचमन, और क्या होता है, प्राणायाम, न्यास, शिखा वंदन।
जी जी, पंचकर्मा।
क्या वो इसी सफाई के लिए है?
हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पंचकर्म जो है, ये बाहरी और भीतरी दोनों तरह की शुद्धि के लिए ही है। पवित्रीकरण से हम शरीर और आसपास के वातावरण को पवित्र करते हैं। आचमन वो मन, वचन और कर्म की शुद्धि का संकल्प है।
अच्छा।
प्राणायाम से प्राण शक्ति के द्वारा अंदर की सफाई होती है। न्यास का मतलब है अपने शरीर के अंगों में, इंद्रियों में पवित्र भावों को स्थापित करना ताकि वो अच्छा काम करें। और शिखा वंदन, वो हमारे ज्ञान और हमारी संस्कृति के प्रति हमारी निष्ठा, हमारे सम्मान का प्रतीक है। ये सब एक तरह से तैयारी है साधक को पवित्र बनाना, ताकि वो ईश्वर की जो किरणें हैं, जो कृपा है, उसे ग्रहण कर सके।
ये तो बहुत व्यवस्थित प्रक्रिया है। अच्छा, शुद्धि हो गई, फिर लोग जप करते हैं, मंत्र जप, इसका क्या मतलब है? क्या ये भगवान की खुशामद करना है, जैसे बच्चे माँ बाप की करते हैं कुछ पाने के लिए?
नहीं नहीं, पूज्य गुरुदेव इस बारे में बहुत साफ कहते हैं, जप खुशामद बिल्कुल भी नहीं है। भगवान को हमारी खुशामद की कोई जरूरत नहीं है, वो भाव के भूखे हैं, खुशामद के नहीं।
तो फिर जप क्यों?
जप असल में मन को धोने का, उससे रगड़ने का, चमकाने का अभ्यास है। जैसे हम साबुन लगाकर कपड़े का मैल साफ करते हैं ना,
हाँ।
या किसी पत्थर को बार बार घिसते हैं तो वो चिकना और चमकदार हो जाता है। वैसे ही जप है, वो मन का जो खुरदरापन है, जो बुरे विचार हैं, उनको मिटाकर मन में चिकनाई, मतलब स्नेह, सद्भावना, प्रेम लाने का एक रिहर्सल है, अभ्यास है,
मन को धोने का अभ्यास। ये बिल्कुल नया विचार है मेरे लिए। तो फिर ये जो हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, नैवेद्य यानी कुछ मीठा चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, अगर उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं तो हम ये क्यों करते हैं?
हाँ, ये भी बड़ा आम सवाल है। देखिए, ये सब ईश्वर को कोई रिश्वत देना नहीं है। ये सारे कृत्य भी असल में आत्म शिक्षण है, अपने आप को सिखाने के तरीके हैं प्रतीकों के माध्यम से।
आत्म शिक्षण कैसे?
जैसे जल चढ़ाना, जब हम जल चढ़ाते हैं तो ये प्रतीक है कि हे प्रभु, हम भी इस जल की तरह निर्मल बने, गतिशील बने, सबके लिए उपयोगी बने, विनम्र बने।
अच्छा।
फूल चढ़ाते हैं तो ये संकल्प लेते हैं कि हमारा जीवन भी इस फूल की तरह खिले, अपनी सुगंध फैलाए, हमेशा प्रसन्न रहे और दूसरों को भी प्रसन्नता दे, हंसता हंसाता जीवन हो।
वाह।
दीपक जलाते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये प्रेरणा है कि हम अपने जीवन को भी ज्ञान और अच्छाई के प्रकाश से भरें, स्वयं प्रकाशवान बने।
और नैवेद्य मीठा?
नैवेद्य या मीठा चढ़ाना प्रतीक है कि हमारे जीवन में भी मिठास आए, हमारे व्यवहार में मधुरता हो, नम्रता हो। और अक्षत यानी साबुत चावल, वो प्रतीक है हमारी कमाई का, कि हम अपनी मेहनत की कमाई का एक छोटा हिस्सा नियमित रूप से श्रेष्ठ कार्यों में, अच्छे कामों में लगाएंगे, ये उसका संकल्प है।
ये तो बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण है। मतलब पूजा का हर एक कृत्य, हर एक चीज जो हम करते हैं, वो असल में हमारे अपने सुधार के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं।
हाँ बिल्कुल, अंततः लक्ष्य है अपने अंदर के विकारों को हटाना, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है ना, गुरुदेव इन्हें पत्थर कहते हैं। उन्होंने एक चोर का उदाहरण दिया था, उसे पहाड़ पर चढ़ना था पर सिर पर पत्थरों का बोझ था, चढ़ नहीं पा रहा था। फिर उसने एक एक करके पत्थर फेंके, तब जाकर वो ऊपर चढ़ पाया। तो जब तक हम अपने अंदर के इन विकारों रूपी पत्थरों को फेंकेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, तब तक ईश्वरानुभूति का जो पहाड़ है उस पर चढ़ना मुश्किल है। तो उपासना का जो पूरा सार है वो यही है, आत्म परिष्कार करो, खुद को शुद्ध करो और फिर ईश्वर से जुड़कर अपना रूपांतरण करो, बदलाव लाओ अपने अंदर।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पूज्य गुरुदेव के अनुसार पूजन कृत्यों का उद्देश्य भगवान को पटाना या उनसे कुछ मांगना नहीं है, बल्कि ये तो खुद को साफ करने, पवित्र बनाने का तरीका है और इस परम सत्ता से जुड़कर खुद को बेहतर, ज्यादा शक्तिशाली और सार्थक बनाने का एक साधन है।
बिल्कुल,
ये सारे कृत्य आत्म शिक्षण और आत्म परिष्कार के प्रतीकात्मक साधन है,
सिंबल्स है।
तो सोचने वाली बात ये है।
हाँ, सोचने वाली बात यही है कि अगली बार जब हम पूजा करने बैठे या कोई भी पूजन कृत्य करें, तो क्या हम सिर्फ उसके बाहरी रूप को देखें या उसके पीछे जो गहरा मतलब छुपा है, जो आत्म सुधार का संकल्प है, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं? शायद तभी हमारी पूजा सच में सार्थक होगी। बिल्कुल, तभी वो असली उपासना बनेगी।